from the conference center at Temple
Square. Temple Square, che sono Melon Kendrasi e Antim Tinoke. Santo Kisi Mashiki Girjagar 178. Other Parsik Mahasamelan Hai. Moment Tabernacle Choir द्वारा इस सभा का संगीत प्रस्तुत किया जाएगा के जगह के सदस्य और अधिकारी दुनिया के सभी क्षेत्रों से आए यहां के जगह के नेताओं से सलाह और आदेश प्राप्त करने के लिए
Production, recording, transcription, or other use of this program without written consent is
permitted. Manson, Gajagar ke pradhan, is sabha ke sanchalan karenge.
Thomas S. Monson, President of the Church,
My brothers and sisters,
जय हम अंतिम दिनों के संतों की यीशु मसीह का गिरजा घर के 178 अर्धवार्षिक महासम्मेलन की प्रथम सभा महासभा की शुरुआत करते हैं. हम दुनिया भर के सदस्यों और दोस्तों का विशेष स्वागत करते हैं जब हम तुम हमारे साथ इस सम्मेलन के कार्य विवरण में भाग ले रहे हो. कृतज्ञता के साथ में महाअधिकारियों और महासहायक अध्यक्षताओं का आभार प्रकट करते हैं जो इस सम्मेलन में उपस्थित है. हम कि दूरदर्शन और रेडियो स्टेशन सैटेलाइट केबल स्टेशन के लिए आभारी हैं जिन्होंने जनसेवा के लिए अपनी सुविधाओं का प्रदान किया ताकि इस सम्मेलन को दुनिया भर पहुंचा सके. इस सभा के संगीत को मैक वुलबर्ग और एड थॉमसन के निर्देशन में टैबरनकल क्वायर द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा जिनके साथ ओर्गन पर क्लेक क्रिस्टेंसन और एंड्रयू अंसवर्थ रहेंगे. गायक मंडली ने इस सभा की शुरुआत इसे गाने के द्वारा हाई ऑन द माउंटेन टॉप और गाएंगे रिडीमर ऑफ इसराइल. 70 के एल्डर शेन एम बवन द्वारा प्रार्थना की जाएगी.
Thank you.
Father in heaven,
हम अपने सर नीचे झुकाकर आपको धन्यवाद देते हैं. हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हम जोसेफ स्मिथ को आकर मिला और यीशु मसीह के साथ आया और पुरोहित को इस दुनिया में लाया. हम आपको धन्यवाद देते हैं 12 चेलों के लिए और प्रेसिडेंट मॉन्सन के लिए, जो आपने उनको शक्ति दिया है कि वो पुरोहित को इस्तेमाल करें. हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर मंदिरों के लिए जो इस दुनिया में है, और आशीष जो आपने हमको दिया है कि हम मंदिर जा सके और अपने परिवार के साथ इकट्ठा हो सके. पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि हम आज सुने और सब संदेशों को सुने कि उसको समझे, और आपके पवित्र आत्मा हमारे साथ रहे और हम उसका आज्ञा का पालन करें, और ये सब हम यीशु मसीह के नाम से कहते हैं, आमीन.
थैंक यू.
धन्यवाद. अब मेरी इच्छा है मैं तुम्हें संबोधित करूं. मेरे भाषण के बाद गायक मंडली गाएंगे, ओ माय सोल कम्यून विद दी. गीत के समाप्ति पर 12 देवताओं के प्रसाद के अल्टोम प्योरी में हमें संबोधित करेंगे, जिनके बाद हम सहायक संस्था महाअध्यक्ष की प्रथम सलाहकार बहन सिल्वा एच ऑलरेड का भाषण सुनेंगे. 70 की अध्यक्षता के एल्डर नील एल एंडरसन फिर भाषण करेंगे देंगे.
मेरे प्यारे और बहनों, हम सम्मेलन में तुम्हारा स्वागत करते हैं. 6 महीने पहले हम मिले और समय कितना जल्दी गुजर गया है. प्रभु का कार्य और आगे बढ़ रही है. अपने सलाहकारों और महाअधिकारियों के साथ ये मेरा सौभाग्य था 3 नए मंदिरों के को समर्पित करना, कुरतिबा ब्राजील में, पारामा शहर में और ट्विन फॉल्स आइडाहो में, जिन्हें लेकर अब दुनिया भर में 128 मंदिर हो गया है. प्रत्येक मंदिर को समर्पित करने से पहले एक शानदार संकेत कार्यक्रम हुआ. कुरतिबा ब्राजील में 4,300 सदस्य, 1,700 आवाजों की गायक मंडली के साथ संगीत और वीडियो द्वारा एक बहुत प्रोत्साहित कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया. वो भारी सोका स्टेडियम जहां कार्यक्रम हो रहा था वो दर्शक से भरा था. हवा चल रही थी और बारिश होने की संभावना थी. मैंने स्वर्ग पिता से प्रार्थना किया कि उन पर दया करें जिन्होंने इतनी मेहनत से हमारे मनोरंजन के लिए तैयारी की थी, और जिनके पोषक और जिनके प्रदर्शक बर्बाद हो जाएंगे अगर गंभीर बारिश हुई. उन्होंने उस प्रार्थना को स्वीकार किया और मनोरंजन के साथ बाद ही अंत में बहुत बारिश हुई. ब्राजील के गिरजाघर के इतिहास को संगीत से प्रस्तुत किया गया था. एल्डर जेम्स ई फाउस्ट और एल्डर विलियम ग्रांट बैंकटर के तस्वीर को दिखलाया गया था. उन्होंने 1938 में कुरिबितिया में प्रचार किया था. जब बड़े स्क्रीन में उनकी तस्वीर को प्रदर्शित किया गया वहाँ बहुत जोरों से जय जयकार हुई. वहाँ एक शानदार कार्यक्रम था. पानामा शहर की मंदिर को समर्पित करने से पहले शाम को हमने देखा कि हमारे 900 युवा इकट्ठा हुए. जब उन्होंने अपने संदेश को प्रस्तुत किया वो रंगीन पारंपरिक कपड़ों में थे. हमने जाना कि उन्होंने एक साल से अभ्यास किया था. वो सन ब्लास द्वीपों और चंगुइनोला इलाके से आए थे. सनब्लास युवकों के लिए राजधानी तक आने के लिए 3 दिनों की यात्रा थी. कार्यक्रम शानदार और प्रेरणाप्रद थी. अभी जल्द ट्विन फॉल्स आदहो के मंदिर के समर्पण की तैयारी में गिरजाघर के सदस्य ने एक भारी मंच को फीला आदहो में बनाया। प्रदर्शन की शाम 3200 जवान पुरुषों और जवान महिलाओं ने इकट्ठे में नीले और सफेद रिबों हिलाते हुए प्रवेश किए, जिससे अखाड़ा बहते हुए पानी की एक विशाल नदी की तरह लगने लगा, जिसका शीर्षक था अमृत जल। इस प्रदर्शन में 14 स्टेक्स के युवा साथ थे। उन्होंने संगीत द्वारा अधिकर्ता की अमृत जल के विषय में दिखलाया। हम सभी जिन्हें इस कार्यक्रम की साक्षी बनने का विशेष अधिकार मिला था, उससे हम प्रेरित और आध्यात्मिक हुए। मुझे ऐसा कार्यक्रम से पसंद हुआ। हमारे युवकों इसमें शामिल होकर ना भूलने वाली कार्य करते हैं, जो दोस्ती वह करते हैं और जो यादें वो पाते हैं वो हमेशा उनकी रहेगी। अगले महीने मेक्सिको शहर के मेक्सिको मंदिर की विस्तृत मरम्मत के बाद उसे समर्पित किया जाएगा। आने वालों महीनों में अन्य मंदिरों को बनाने का कार्य समाप्त हो जाएगा और ओपन हाउस और समर्पण का कार्य होगा। इस सुबह मैं आभारी हूँ कि आपको बताओ कि हम 5 और नई मंदिरें बनाने वाले हैं। वो इन जगहों पर होगी: कैलगरी अल्बर्टा कनाडा, कोरोडोबा अर्जेंटीना, कैंसस की शहर में, फिलाडेल्फिया पेंसिल्वेनिया और रोम इटली में।
भाइयों
और बहनों, हमारा प्रचारक जो दुनिया भर में सेवा प्रदान कर रहे हैं, वो लगातार उन्हें ढूंढ रहे हैं जो सच्चाइयों को ढूंढते हैं। हमेशा की तरह गिरजाघर के सदस्य बढ़ रही है। पिछले 6 महीनों से मैं देशों के नेताओं और सरकारों के प्रतिनिधियों से मिल रहा हूं। जिससे मैं मिल चुका हूं, वो गिरजाघर और हमारे सदस्यों के प्रति कृपालु हैं। फिर भी बच्चे हैं दुनिया के इलाके जहां हमारा प्रभाव सीमित है और जहां हम स्वतंत्रता से समाचार को बता नहीं सकते हैं। जैसे प्रेसिडेंट स्पेंसर डब्ल्यू किम्बल ने पहले कहा था, मैं तुमसे अगर कहता हूं कि उन इलाकों को खोलने के लिए प्रार्थना करो कि हम शायद उनके साथ सुसमाचार के आनंद को बांट सके। जब हमने उस समय प्रार्थना की, हमने चमत्कार देखी कि उन देशों के दरवाजे खुल गए थे। वैसा ही फिर होगा जब हम विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे। अब मेरे भाइयों और बहनों, हम यहाँ आए हैं आदेश और प्रेरणा के लिए। तुम में से कुछ गिरजाघर में नए हो, हम तुम्हारा स्वागत करते हैं। तुम में से कुछ समस्याओं, निराशा और कठिनाइयों से गुजर रहे हो, हम तुमसे प्यार और तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं। कई देश इन 2 दिनों में बांटे जाएंगे। मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम जो पुरुष और महिलाएं तुमसे बातें करेंगे, उन्होंने प्रार्थना की है, उन्हें क्या कहना है, स्वर्ग से उनको मार्ग और मदद मिलेगा। हमारे स्वर्गीय पिता हमारी जरूरतों से सहमत है। मैं आशा करता हूँ कि हम उनकी पवित्र आत्मा से भरपूर हो जाएं जब हम इस भरी सभा से सीखे और इसमें भाग ले। ये मेरी सत्य प्रार्थना है यीशु मसीह के नाम से आमीन। हम में से जो साथ है कुछ और एल्डर वेडलैंड बहुत समय से साथ हैं, जीवन की परीक्षा के कुछ तरीकों को पहचान चुके हैं, अच्छे और बुरे के समय और ऊपर और नीचे जाने कल्चरल का और दुख का समय और अधिक का और कम के समय हैं। इस अनुभव की एक चुनौती है कि जीवन की तनाव और घिंचाव की हम पर विजय पाने मौका है और आशीर्वादी रहते हैं जीवन की, शायद जब कठिनाइयों चेतावनी आक्रमण करेंगे हमारे पास रॉबर्ट ब्राउनिंग के आश्वासन शब्द होने चाहिए जो हमारे दिमागों में अभिकृत होते चाहिए। अच्छी चीजों अभी नहीं प्रतीत होती है। जीवन की सभी संघर्षों और आदयों की भविष्यवाणी हम नहीं कर सकते, उसकी नहीं होने नहीं बिना संदेह से। यीशु के समाचार सच्चा और अभी आने वाला है। मुझे याद है कि मेरे जीवन का एक विशेष समय था जब मैं आदर्श और तनाव में था। मेरी नौकरी के साथ समस्या थी और उसके समय मेरे पत्नी को एक जानलेवा वाली बीमारी थी। ये वैसा समय था जब लगता था कि मुझे और मेरे परिवार की अधिक कठिनाई को बोझ सहना पड़ रही है। जिन दिनों में जब हमारे उचित जीवन में तनाव और चेतावनी और विजय पाने चाहते थे, मेरे पत्नी और मैंने एक तरीका पाया उन्हें दूर करने के लिए। हम ये जगह गाड़ी में गए जो हमारे घरों को कुछ महीनों दूर थी, ताकि थोड़ी देर के लिए हम अपनी समस्याओं के दूर हो जाएं, बात करें और दूसरे को दिलासा दें। हमारे जगह थी वॉल्डो पॉन्ट, वो सुंदर जगह थी, छोटा तालाब था, पेड़ों के वेन के गिरे हुए था। जब मेरे पत्नी मेरे शक्ति होती थी, हम तालाब के इधर उधर चले के जाते थे। अन्य दिन जब वो चल नहीं सकती थी, हम सिर्फ गाड़ी में ही बैठकर बातें करते। वॉल्डो पॉन्ट रुक याद करने और चुना करने के विषय जगह थी, शायद उसकी इतिहास के करने का जो हेनरी थोरो के कोशिशों की संबतों में, जो जब उन्होंने अपने आप को कुछ वर्षों के लिए किया। वो 1845 का मार्च था जब तोराव ने निर्माण किया वो वॉटर पॉन्ट के तौर पर जाए, और वे जाने के लिए कि जीवन क्या वहाँ जो वर्ष पिए। उन्हें अपने अच्छाई दोस्त राल्फ वाल्डो एमोशो की जमीन में रहना शुरू किया। उसे रेलवे कमजोरी कर्मचारी से एक पुरानी झोपड़ी खरीदा उसके किया, और कहा कि एक घर और आजादी के लिए उसे केवल $28.12 खर्च किया। उसके एक बगीचा तैयार किया जहां उसने मटर, आलू, मकई, बीन, टेनिप बोए, ताकि उसके सरल जीवन को बनाए नहीं मदद मिल सका। उसने दो और अधिक आके बीन बोया और अपने से एक छोटा मौका जरूरत पूरी की। थोरो पास उसके छोटा घर में ना गाड़ी थी ना कैलेंडर। वो अपने समय प्रकृति और सुंदरता और आश्चर्य लिखने और अध्ययन में बिताता था, जिन्हें स्मृति और शांति, पेड़, चिड़ियां और जानवर। वो सन्यासी का जीवन नहीं जी रहा था। कई बार वो कॉनराड शहर जाता था और वहां दूसरों को आमंत्रित करता था कि उसके घर आए और वार्तालाप करे। वॉल्डो पॉन्ट के उसके अनुभव धीरो ने निर्णय किया कि मानव के लिए सिर्फ चार चीजों की जरूरत है, भोजन, कपड़े, पहनाव और ईदान। मैं जीवन की इन चारों मूल जरूरतों के प्रतीक पर व्यस्तपूर्वक कहना चाहता हूँ, और सरल जीवन के आध्यात्मिक लाभ पर भी। प्रथम जरूरत भोजन है। अधिक दिन के संतों का यीशु मसीह का गिरजाघर की संदेशों के रूप में हमारे पास पवित्र ज्ञान है कि प्रगत की हुई सच्चाई जो शारीरिक और आत्मिक की संबंध के में डॉक्ट्रिन कवर्नेंस 88:15 में लिखा गया, आत्मा और शरीर मानव की आत्मा है, हमें दोनों शारीरिक और आत्मिक रूप से आशीर्वाद देने के लिए प्रभु ने हमारे लिए स्वस्थ किया है। और सभी संत को बुद्धिमानी के शब्द को और उसका पालन करने के आदेशों के प्रति आकारी होने उन्होंने उनकी नबी में मिले और हमारे और विधि और ज्ञान का विशाल खजाना पाए, छिप हुए खजाने भी, और दो दें और थकने नहीं, और चैलेंज और बेहोश नहीं होंगे। और मैं प्रभु उनसे वादा करता हूँ कि बर्बाद करने वाले फरिश्ते उनके पास से गुजर जाएंगे इज़राइल का बच्चों के रूप में, और उनका वादा नहीं करेंगे। बुद्धिमानी का शब्द के संबंध में सलाह देने के लिए सबसे अच्छा ही पुस्तक है फॉर स्ट्रेंथ ऑफ द यूथ। उसमें लिखा गया है, प्रभु ने तुम्हें आदेश दिया है कि अपने शरीर को अच्छी परवाह करो। ये करने के लिए डॉक्टर कवनन 39 में पाया जाता है, पुस्तक भोजन खाइए, नियुक्त रूप से कसरत किए और प्राप्त समय पर सोइए। जब तुम सभी चीजों को करोगे, तुम हानिकारी आदतों से दूर रहोगे और अपने जीवन पर नियुक्त कर सकोगे पवित्र आत्मा के साथ भी पाओगे। कोई भी नशीली पदार्थ, केमिकल या खतरनाक आदत को उठाना या हाय उपड़ना करते हुए तुम्हारे नहीं होना। काउंटर दवाइयों जिनका उपयोग किया जाता है और घरेलू केमिकल्स, हम अपने शरीरों को हानि नहीं पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि वो ईश्वर का दिया हुआ तोहफा है और हमारे स्वर्ग पिता की खुशियों की महान योजना का भाग है। दूसरी मूल आवश्यकता हमारे कपड़े हैं। हर सरल जीवन जो आत्मिक आशीर्वाद लाता है, उसे लिए जरूरी है साधारण कपड़े पहनना। हमारे कपड़े और पहनाव सिंगार या संदेश भेजता है दूसरों के लिए कि हम कौन है। जब हम शालीनता से कपड़े पहनते हैं, हम प्रभु के पवित्र आत्मा को भी अमृत करते हैं, वो हमारे लिए ढाल बनती है। महिलाओं के फैशन में सांसारिक झुकाव है, वो हमेशा कपड़ों के अधिक बनाते हैं, उनके बनावट की सारी काफी फैशन ऊपर कोशिश करते हैं कि वो तीन ड्रेस की उठने कपड़े से वो जाते हैं। कपड़े बहुत कम ऊपर होते हैं, काफी नीचे होते हैं। मेरे समय में उन्हें अच्छी तीन और बहकना कहा जाते थे। मैं विश्वास करता हूं कि बहुत लापरवाह पहनाव के साथ बहुत लापरवाह आचरण जुड़ा है। तुम में से कई आश्चर्य करने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं कि अपने पहनाव और पौनाव सिंगारन में अनुभव करें, जो प्रभु के विचार में गलत प्रकार का ध्यान है। मोमन की पुस्तक में जीवन के विषय की कहानी में उसने लोगों से कपड़े बहुत महंगे थे जिन्होंने उनका उपस किया और जिन्होंने विशेष की पहल खोली। ये जानना तुलित है कि फैशन जानकर उपहास करने वाले महान और भ्रष्ट इमारत में लोगों समृद्ध करने लिए जिम्मेदारी और समृद्धता हुए रहे थे। प्रधान नेल्डन टेना ने एक बार हमें ये शब्दों से कहा, पहनाव में शालीनता मन हृदय और प्रसाद है जो खुद साथी संदेश और हमें सभी के शरीर समान से आती है। शालीनता विनम्रता मर्यादा और उपयुक्तता दिलाता है। इन सिद्धांतों की संकट में और पवित्र आत्मा द्वारा मार्गदर्शन पाकर माता पिता संस और युवा का कपड़ों बनाना चाहिए। अब हम तोराव की तीसरी जरूरत को देखें जो है पढ़ना। समाचार पत्रों में वितरण आवास की समस्या की सुधारण भारी होती है। हमारे आमदनी निर्णय कर सकता है कि तरह की घर हम खरीद सकते हैं, ना कि पड़ोसी की कपड़े मकान की गाली की उस पर है। मेरे पुरानी यादों से ब्रिगम यंग की दिनों के लेकर मैंने मार्च पर खड़े हुए पुरुषों से सुना, लोगों के आगर की रहे कि कर्ज में ना डूबे। और मैं विश्वास कर होता हूं कि आज की हमारी अधिक समस्या इसलिए होती है क्योंकि लोग सालों को अपनाते हैं, अपने कमाई से अनुसार खर्च करिए, कर्ज से दूर रहिए, कठिन समय से पास कफत ना कीजिए, अच्छा तरह प्रबंध करने वाले परिवार भज रही हैं, वो प्राप्त करते हैं। थ्योरी के अंतम इंतान था, हम धान और ऊर्जा के बारे में बहुत सुन रहे हैं, उसके महंगाई सुमित पड़ती उसके पर हमारी असुरक्षित और जो नहीं है इन पर निर्भरता और ऊर्जा के नई और लंबे समय तक रहते वाले हैं। प्रभु ने हमें सुंदर योजना दी है कि हम कैसे उसके पास लौट सकते हैं, पर हमारी मनसारी यात्रा की पूर्ति के लिए हम पांच बुद्धिमान कमरियों को मुकाबला करना चाहते हैं। अपने इच्छा को ईश्वर की इच्छा की तरह रखकर हम वादे करे हुए आशीर्वादों को प्राप्त कर सकते हैं।
धार्मिकता में बहुत सरलता है। जीवन में प्रकृति जिसका हम सामना करते हैं उसके समता के लिए चाहे उचित मार्ग या गलत मार्ग है। अगर हम उचित मार्ग चुनेंगे धार्मिकता के सिद्धांत द्वारा हम अपने क्रमों और समाधान प्राप्त कर सकते हैं। थोरो की मौत से पहले उसने पूछा गया कि क्या उसने ईश्वर के समझौता की थी। उसे जवाब दी, मैं जान कर नहीं हूं कि कभी हमने तरक्कीवादी की था। जीवन के तनाव के आराम प्राप्त करने के लिए हमारी खोज में हम अपने जीवन को सरल बनाकर तरीकों सच्चाई ढूंढते हैं। हम योग्य रहें पवित्र आत्मा की सच्चाई के लिए और पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन अपनाने जब हम लौट कर जाएं। हम अपने आप को तैयार करें कि अंतिम उद्देश्य के प्राप्ति के लिए ताकि लौट सके हैं स्वर्ग पिता के साथ रख सके। मेरे प्रार्थना है ये सब यीशु मसीह के नाम से, आमीन।
प्रभु ने सिखलाया है कि जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। बैप्टिज्म इसलिए आवश्यक है हमारे उद्धार के लिए। पुनर्जीवित मसीहा के स्वर्ग जाने से पहले उन्होंने अपने चेलों को आदेश दिया, इसलिए तुम जाओ सब जातियों के लोगों चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बैप्टिज्म दो, उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी उन्हें सिखाओ। पुनर्स्थापना के समय उन्होंने अपना आदेश दोहराया, इसलिए तुम्हें लोगों से पश्चाताप के बारे में कहना है। प्रभु के गिरजाघर की जिम्मेदारी दुनिया में सुसमाचार प्रचार करना है। ये मिशनरी कार्य का आधार है और हमारे मिशनरियों का कर्तव्य है कि यीशु मसीह और उनके प्रायश्चित में विश्वास द्वारा पुनर्स्थापित सुसमाचार को प्राप्त करने में मदद करने, पश्चाताप, बैप्टिज्म, पवित्र आत्मा के तोहफा को प्राप्त और अंत तक सैन्य द्वारा दूसरों को आमंत्रित करने की वो मसीहा में आए। नए मेंबरों, भविष्य पीढ़ियों और मिशनरियों के जीवनों में मिशनरी कार्य के महत्वपूर्ण प्रभाव और आशीर्वादों पर मैं कहना और गवाही देना चाहती हूँ और हम कैसे मिशनरी कार्य में भाग ले सकते हैं। जब मैं 14 वर्ष की थी, एक सुंदर अगस्त की सुबह एल्डर प्रीना और एल्डर पर्किंस हमारे दरवाजा पर खटखटाए हैं। उन्होंने हमारे परिवार को ईश्वर के सच्चे शब्दों के बारे में सिखलाना शुरू किया। बाद में बेटों में उन्होंने हमें प्रार्थना करना सिखलाया। उन्होंने हमें पुनर्स्थापना और उद्धार की योजना के बारे में भी सिखलाया। तीसरी या चौथी भेंट में हमारे परिवार के बस बाकी सजे उनकी बातों को सुनना छोड़ दिया, सिवाय मेरी 17 वर्ष की बहन दीना और मैं। हम दोनों ने पवित्र आत्मा की गवाही को अपने दिलों में महसूस किया और आत्मिक पुष्टिकारों को प्राप्त किया। हमने मोर्मन की पुस्तक की एक प्रति ली और उसे पढ़ना शुरू किया। प्रत्येक दिन पाठशाला के बाद हम घर बार पर दौड़ती था कि कौन पुस्तक पहले ले सकते। जो पहले पहुंचती थी तो वो पढ़ती थी, दूसरी बिना धैर्य से भोजन के समय तक। हम बहुत उत्साहित थे बुक ऑफ मोर्मन को पढ़ने के लिए। हमने गिरजाघर जाना शुरू किया और जल्द हमारा बैप्टिज्म हुआ। हमारा पिता ने हमें आज्ञा दी कि हम बैप्टिज्म कर सके, पर हमारी माँ थोड़ी घबराहट पेश। हमारे बैप्टिज्म के दिन वो और हमारी बाकी भाई बहनों पहली बार गिरजाघर आए। उसने पवित्र आत्मा को महसूस किया हमारी गवाहियों को सुनने के बाद। कुछ सप्ताह बाद मिशनरी वो और हमारी छोटी भाई बहनों का बैप्टिज्म हुआ। मेरा जीवन हमेशा के लिए बदल गया और यीशु मसीह का सुसमाचार मेरे जीवन को विश्वास करने वाली शक्ति बन गई। प्रभु और मिशनरियों के आभार की गहरी भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। प्रभु ने मुझे पुनर्स्थापित सुसमाचार के ज्ञान से आशीर्वाद दिया और मुझे लगा कि मैं इस ज्ञान को दूसरों के साथ बांटूं। मैं मिशनरी बनना चाहती थी। कुछ महीने बाद मेरी बहन दीना और मुझे सान साल्वाडोर में नियुक्त किया गया स्थानीय मिशनरियों के रूप में। इस नियुक्ति से हमें मौका मिला कि घर घर जाएं और यीशु मसीह के पुनर्स्थापित सुसमाचार की अच्छी खबर को बांधकर बैप्टिज्म के पानी में दूसरों को ले आए। बाद में हम दोनों ने सेंट्रल अमेरिकन मिशन में पूरे समय के मिशनरी कार्य किया। मेरा मिशन कार्य से मेरे जीवन में बहुत प्रभाव पड़ा। मैं प्रभु और पार और भी निर्भर होंगी। पवित्र आत्मा ने मार्गदर्शन को ढूंढना और ईश्वर से बच्चों के पास अधिक प्यार के भावना को सीखा। मेरे प्रचार कार्य के अनुभव वो भाग बना कि मैं कौन और क्या हूँ। मिशनरी कार्य मेरा मनोभाव बन गया। इसने मेरे जीवन और मेरे परिवार पर बहुत प्रभाव पड़ा। एल्डर जेफरी आर हॉलैंड ने इन शब्दों के साथ वर्णन किया जो प्रभाव उसके मिशन ने उसके जीवन पर डाला। मेरा मिशन मेरे लिए सब कुछ 47 वर्ष पार भी है। उन 47 वर्षों में मैंने एक रोज भी अपने मिशन के बारे में मैं सोचा नहीं भूला। हर रोज मैं सोचा। कुछ वर्ष पहले मेरे नाती क्रिश्चियन 8 वर्ष का अपने बैप्टिज्म की योजना कर रहा था। उसने अपनी माता से पूछा कि क्या मैं भाषा दे सकूं और अपने धर्म परिवर्तन की कहानी बांध सकूं। जब मैंने पूछा कि क्यों वो चाहते थे कि मैं करूं, उसने जवाब दिया, नानी वो बहुत आवश्यक है। क्या तुम नहीं जानती कि अगर आपने सुसमाचार नहीं स्वीकार किया होता, मेरा बैप्टिज्म नहीं होता, मैं वो नहीं रहता जो मैं हूँ आज। मैं नहीं जानती हूँ कि मिशनरी ये जानते हैं कि उनके कार्य के प्रभाव कितना पड़ता है। मेरे अपने परिवार में सुसमाचार के आशीर्वादों ने 4 पीढ़ियों को प्रभावित किया है। प्रधान हिंकली ने कहा था कि जब हम एक लड़की को बचाते हैं, हम पीढ़ियों को बचाते हैं। मेरा विवाह मंदिर में हुआ और मेरे पास 8 बच्चे हैं। वो सभी गिरजा के वफादार सदस्य हैं। उनमें से 6 की शादी हो चुकी है, उनके पास अपने बच्चे हैं। हमारे परिवार में 34 सदस्य हैं। दोनों मेरे पति और मैंने मिशन किया और हम 2 लड़कों और 6 बेटियों ने भी मिशन कर लिया। साथ में हमने कई देशों में कई 100 लोगों को सुसमाचार अपनाने में मदद की है। उन नए मेंबरों और उनके बच्चों में से कुछ ने भी मिशन कर लिया है। मिशनरी कार्य गिरजाघर के लिए आवश्यक भाग है। कोई और महान कार्य नहीं है, कोई और आवश्यक कार्य नहीं। वो भविष्य पीढ़ियों को आशीर्वाद देगा। तुम शायद अपने आप से पूछते होगे, मैं कैसे मिशन कार्य में सहायता प्रदान कर सकती हूँ, किस तरह से मैं भाग ले सकती हूँ। 2 मूल सच हैं जिन्हें दिमाग में रखना चाहिए। प्रथम, एक स्पष्ट समझ रखिए कि ईश्वर अपने सभी बच्चों से प्यार करते हैं और उनका उद्धार करते हैं। डॉक्ट्रिन कवनन में हम पढ़ते हैं, और कितना महान आनंद उन्हें है उस आत्मा के लिए जो पश्चाताप करता है। दूसरा, मसीहा और उनके पुनर्स्थापित सुसमाचार पर हमारा संदेश सबसे आवश्यक तोहफा है जो तुम्हें देना है। जैसे प्रीच माय गॉस्पल में लिखा है, प्रचार कार्य 4 गुना कोशिश है। छानबीन करने वालों को ढूंढना, सिखलाना और बैप्टिज्म देना, नए सदस्यों के सहचर्य करना और कमजोर सदस्यों के साथ दोस्ती और सिखलाना। गिरजाघर के प्रत्येक सदस्य, बच्चे, युवा और बालक इन किसी या सबसे कोशिशों में सहायता प्रदान कर सकते हैं। अच्छे पड़ोसी और अच्छे दोस्त बनकर शुरू कीजिए। धार्मिकता और दयालुता के उदाहरण बनिए। तुम्हारे मुस्कान को प्यार, शांति और खुशियां बांटने दीजिए। सुसमाचार केंद्र जीवन बताइए। फिर अपने मिशनरी कार्य कोशिशों में विशिष्ट रहे। मुझे कुछ विचारों पर सुझाव देने दीजिए। तुम शायद 2 या 3 को पार सकते हो। अगर घर पर तुम्हारे पास बच्चे हैं, उन्हें मिशनरी कार्य की सेवा की त्याग करने में मदद कीजिए। मिशनरियों को सुनने के लिए या हमारे गिरजाघर सभाओं और गतिविधियों में भाग लेने के लिए परिवार और दोस्तों को आमंत्रित कीजिए। मिशनरियों के साथ छानबीन करने वालों के घर तक साथ जाइए। अपने घर पर परिवार घरेलू शाम सभा के लिए लोगों को आमंत्रित कीजिए। फैमिली हिस्ट्री सेंटर पर लोगों को आमंत्रित कीजिए, मिशनरियों को लोगों के नाम दीजिए, सदस्य लोगों के नाम के सबसे महान और उचित स्रोत हो सकते हैं। जो दोस्त और परिवार सदस्य नहीं हैं, उनसे अपने विश्वास और अपनी गवाही बांधिए, दूसरों तक पहुंचने के लिए मौका ढूंढिए, छानबीन और नवदार्मियों के लिए दोस्त का हाथ बढ़ाइए, जो सच्चाई ढूंढते हैं उन्हें ढूंढने के लिए अपनी पूरी कोशिश दीजिए। अगर तुम्हारे परिवार या दोस्त प्रचार कार्य कर रहे हैं, उन्हें प्यार और प्रोत्साहन का पत्र भेजिए। तुम अपनी मेहनत का परिणाम में मानव अनुभव करोगे। प्रचार कार्य के महान उत्साह तुम्हारे पूरे वार्ड या ब्रांच को मजबूत करेगा। तुम्हारी मेहनत का प्रभाव पूरा गिरजाघर महसूस करेगा। जब मेरी बेटी मार्जी दूसरी कक्षा में थी, उसने अपनी प्रिय सहेली को आमंत्रित किया वो उनके साथ प्राइमरी में जाएं। उसकी सहेली का पिता ने पहले मिशनरियों को अस्वीकार किया था, पर जब मार्जी उसके घर कुछ गिरजाघर परेशान के साथ पहुंची, उसने ध्यानपूर्वक से जोसेफ स्मिथ और प्रथम दृष्टि के बारे में गवाही को सुना। उसने प्राइमरी जाने दिया और उसने मिशनरी को आमंत्रित दी कि वे उसके बेटी को सिखाए और बैप्टिस्म करने के लिए आज्ञा दी। वो और उसकी पत्नी बैप्टिस्म सेवा में भाग लिया। हम सभी प्रचार कार्य में भाग ले सकते हैं। ये प्रभु का कार्य है और वो उसे करने में हमारी मदद करेंगे। उनके सुसमाचार को प्रत्येक देश में जाना और उनके साथ उनकी सच्चाई बांटने द्वारा हम उनके हाथों का औजार हो सकते हैं, ताकि दूसरों के जीवन को आशीर्वाद देके इस प्रक्रिया हम बहुत आशीर्वाद मिलेगा। हम स्नेही स्वर्गीय पिता के बच्चे हैं। उन्होंने अपने पुत्र को भेजा ताकि हर लोग उनके साथ हमेशा रह सकें। इसी में यीशु मसीह के नाम से गवाही देती हूँ। आमीन।
I rejoice with you,
Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, के सदस्यों के रूप में मैं तुम्हारा साथ हर्षित करता हूँ। दुनिया भर में प्रत्येक महाद्वीप, सभी शहर और गांव में हम एक बड़ा परिवार हैं। हम आगे जाएं और यीशु के नाम लें, एक संकल्प रखें कि अंत तक उनकी सेवा करें, उनकी सेवा करें। जबकि कई अनुभव हैं, जैसे हम आज कर रहे हैं, आत्मिक शक्ति के साथ ऐसे भी दिन होते हैं जब हम ना तैयार रहने की स्थिति महसूस करते हैं, जब संदेह हमारी आत्माओं में प्रवेश करता है। मसीहा के चेलों के रूप में हमारी विजय का भाग यह है कि हम ऐसी स्थिति में क्या करें। लगभग 40 वर्ष पहले जब मैं मिशनरी की चुनौतियों पर विचार किया, मैंने तैयार होना ना महसूस किया। मुझे याद है जब मैं प्रार्थना की, स्वर्गीय पिता, मैं कैसे मिशन कर सकता हूँ जब मैं बहुत कम जानता हूँ। जब मैंने प्रार्थना की, ये भावना आई, तुम सब कुछ नहीं जानते हो, पर तुम पर्याप्त जानते हो। हमारी आत्मिक यात्रा जीवन भर की प्रक्रिया है। शुरू में या मार्ग में हम सब कुछ नहीं जानते। हमारा परिवर्तन धीरे धीरे होता है। पहले हम प्रभु ईसा मसीह पर अपने विश्वास की नींव बनाते हैं। हम पश्चाताप, बपतिस्म और पवित्र आत्मा के तोहफे के सिद्धांतों को सीखते हैं। हम लगातार प्रार्थना करते हैं और लगातार बुक ऑफ मॉर्मन की गवाही देते हैं। हम लगातार प्रार्थना करते हैं और लगातार बुक ऑफ मॉर्मन की गवाही देते हैं। हम अपनी जिंदगी में स्थिर और सहनशील रहते हैं। कभी कभी प्रभु का यह जवाब होगा, तुम सब कुछ नहीं जानते, पर तुम पर्याप्त जानते हो, सही काम करने के लिए पर्याप्त जानते हो। नीफाई ने कहा, मैं जानता हूँ कि वे अपने बच्चों को प्यार करते हैं, फिर भी मैं सभी बातों का अर्थ नहीं समझता। एक बार मैंने दक्षिण यूरोप के एक मिशन में गया। उस दिन एक नया मिशनरी अपने अनुरोध पर वापस जा रहा था। उसने मुझे अपने कठिन बचपन के बारे में बताया। उसने मुझे नई भाषा सीखने की कठिनाइयों के बारे में बताया। तब उसने कहा, ब्रदर एंडरसन, मैं तो ये भी नहीं जानता कि अगर भगवान मुझसे प्यार करते हैं। जब उसने इन शब्दों को कहा, मेरी आत्मा ने ये महसूस किया, वो जानता है कि मैं उससे प्यार करता हूँ, वो जानता है। फिर मैंने उससे कहा, एल्डर, मैं जानता हूँ जो तुमने कहा, लेकिन एक चीज पर मैं तुम्हें सुधारता हूँ। तुम जानते हो कि भगवान तुमसे प्यार करते हैं, तुम जानते हो कि वे करते हैं। वो अपना सिर झुकाकर रोने लगा। ब्रदर एंडरसन, उसने कहा, मैं जानता हूँ कि भगवान मुझसे प्यार करते हैं, मैं जानता हूँ। वो सब कुछ नहीं जानता था, लेकिन पर्याप्त जानता था। वो जानता था कि भगवान उससे प्यार करते हैं। उससे अपने मिशन पर रहने की शक्ति मिली। भाइयों और बहनों, हर किसी को भगवान से प्रेरणा मिलती है और हम उन्हें अपनी आत्मा में ढाल लेते हैं। इस तरह हम जिंदगी की मुश्किलों के लिए तैयार होते हैं। ईसा मसीह ने कहा, अपने दिलों में निश्चय कीजिए कि तुम मेरे आदेशों का पालन करोगे। कई वर्ष पहले मेरे एक दोस्त की बेटी की मृत्यु हो गई थी। मेरे दोस्त को बहुत दुख हुआ। वो अपने सिद्धांतों के बारे में सोचने लगा। उसकी माँ ने मुझे उसे आशीर्वाद देने को कहा। जब मैंने अपने हाथों को उसके सिर पर रखा, मुझे प्रभाव महसूस हुआ कि विश्वास सिर्फ एक भावना नहीं है, केवल एक भावना नहीं है, वो एक निर्णय भी है। उसे विश्वास का निर्णय करना पड़ेगा। मेरा दोस्त सब कुछ नहीं जानता था, लेकिन पर्याप्त जानता था। उसने विश्वास का मार्ग चुना। उसने प्रार्थना की और उसका आत्मिक संतुलन लौटा। कुछ समय पहले मुझे उसके बेटे से एक चिट्ठी मिली। वो विश्वास और गवाही से भरी हुई थी। मैंने समझा कि किस तरह एक पिता को के कर्मों द्वारा उसके बेटे को आशीर्वाद मिला। चुनौतियां, कठिनाइयां, सवाल, संदेह, ये जिंदगी का भाग हैं। लेकिन हम अकेले नहीं हैं। प्रभु ईसा मसीह के मानने वालों के रूप में हमारा आत्मिक भंडार है, रोशनी और सच्चाई से भरा हुआ है। डर और विश्वास साथ में नहीं रह सकते हमारे दिलों में। ईसा ने कहा, डरिए मत, सिर्फ विश्वास कीजिए। हम ये निश्चय बार बार बनाते हैं। हम ये देखना शुरू करते हैं कि जो रोशनी प्राप्त करता है और भगवान का काम करता है, वो और भी ज्यादा रोशनी प्रसार करता है और अंत तक वो रोशनी बढ़ती जाती है। हमारे सवालों का हल निकलता जाता है। हम जानते हैं जो हम जानते हैं। यीशु ने कहा, जब तक तुम बच्चों के समान नहीं बनते, तुम स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते हो। हैडली पे अब 7 वर्ष की है। हैडली जन्म से ठीक से नहीं सुन सकती थी। उसके माता पिता ने काफी मुश्किल से उसे बोलना सिखाया। हैडली और उसके परिवार ने खुशी से उसकी मुश्किलों को अपनाया है। एक बार जब हैडली 4 वर्ष की थी, वो अपनी माता के साथ एक दुकान में खड़ी थी। उसने अपने पीछे देखा कि एक छोटा लड़का व्हीलचेयर में बैठा हुआ था। उसने देखा कि लड़के के पैर नहीं थे। हालांकि हैडली ने बोलना सीख लिया था, उसे अपनी आवाज की प्रबलता का नियंत्रण करने में मुश्किल होती थी। उसने अपनी माँ से ऊंची आवाज में पूछा कि उसके पैर क्यों नहीं थे, लड़के के पैर क्यों नहीं थे। उसकी माता ने हैडली को समझाया कि भगवान ने अपने बच्चों को अलग अलग बनाया है। ठीक है, हैडली ने जवाब दिया। हैडली ने उस छोटे लड़के से कहा, क्या तुम जानते हो कि जब भगवान ने मुझे बनाया, मेरे कान काम नहीं कर रहे थे, इसलिए मैं विशेष हूँ। उन्होंने तुम्हें पैर नहीं दिए हैं और इसलिए तुम विशेष हो। जब यीशु आएंगे, मैं सुन सकूंगी और तुम्हें पैर मिल जाएंगे। यीशु सब कुछ ठीक करेंगे। जब तक तुम बच्चों के समान नहीं बनते, तुम स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते। हाँ हैडली, जब यीशु आएंगे, वो सब ठीक करेंगे। यीशु ही मसीह हैं, वे पुनः जीवित हुए हैं, वे हमारे पापों का बचाते हैं। प्रॉफिट जोसेफ स्मिथ, उनके पृथ्वी पर प्रॉफिट क्या था, प्रॉफिट थॉमस एस मॉन्सन प्रॉफिट हैं। आमीन।
Choir and congregation.
अब गायक मंडली और सभा गाएगी, कम ई चिल्ड्रन ऑफ द लॉर्ड। गाने के बाद हम सत्र के एल्डर मार्कस से एडिकेटिस का भाषण सुनेंगे। उनके बाद 12 देवताओं के प्रसाद एल्डर डेलन एच ओक्स भाषण देंगे। गायक मंडली फिर गाएंगे, डू व्हाट इज राइट।
This is the 178th Semi-Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Thank you.
Good morning, dear brothers and sisters.
शुभ भाइयों और बहनों, आज मुझे खुशी और सम्मान मिला है आपसे बात करने का. प्रार्थना है कि भगवान मार्गदर्शन करे और उनकी आत्मा साथ रहे ताकि प्रचारक और श्रोता एक दूसरे को समझ पाए और एक साथ पवित्र और खुश बने. 2 जून 1940 मेरे पारिवारिक इतिहास में महत्वपूर्ण दिन है. इस दिन मेरे पिता का गिरजे में बपतिस्मा हुआ. अपने पिता को लिखे खत में एल्डर जैक मैकडोनल्ड बपतिस्मा करने वाले एक प्रचारक ने उस दिन का ये वर्णन किया. पिछले रविवार खूबसूरत दिन था. हम प्रचारक एक एकांत स्थान नदी किनारे गए. वहाँ एल्डर जोन्स और मैंने अपना पहला बपतिस्मा किया. एंथनी आइडुकाचिस बर्फीले पानी में उतरा और गुर्जे का सदस्य बना. सब खूबसूरत था. नीला गगन, हरी भरी वसुंधरा, सृष्टि स्थिर थी. हम सभी को एक महान दिव्य असर महसूस हो रहा था. घर चलते हुए हमारे नए सदस्य ने कहा कि वो दिन बहुत अनोखा और बढ़िया गुजरा था. उसे लगा वो नया आदमी बना था. वो हमारा पहला बपतिस्मा था. श्रेय किसी को नहीं मिलता, अपना परिवर्तन उसने खुद किया. इससे मेरी जिंदगी का इतिहास बदल गया. शायद मेरे पिता को उस सही फैसले का अनुमान नहीं था, लेकिन मैं उसके लिए उनसे प्यार करता हूँ. वे 30 साल पहले गुजर गए, लेकिन मैं उनके नाम का हमेशा स्मरण करूँगा. मेरे पिता के माता पिता लिथुवेनिया से थे, लेकिन वो स्कॉटलैंड में पैदा हुए. वो ब्राजील जवाने में आए थे. अंग्रेजी की जानकारी ने परिवर्तन में सहायता की, क्योंकि वो मॉर्मन की किताब अंग्रेजी में पढ़ पाए. उस समय पोर्चुगीज में अच्छा भाषांतर नहीं था. भाषा की बाधा ने मेरी माँ को गिरजे में शामिल होने से कई सालों तक रोका, लेकिन जब वो गिरजे में शामिल हुई, वो एक प्रभावशाली आदर्श बनी, समर्पण और परिवार में भगवान प्रति प्यार का. अब उनकी आयु 92 साल की है और वो यहाँ मौजूद है. बेहद खुशी से मैं कहता हूँ, मैं उनसे प्यार करता हूँ उनकी निष्ठा के लिए, और उनके नाम का मैं हमेशा स्मरण करूँगा. मैं प्रशंसा करता हूँ अपने पिता के साहस की, जो बपतिस्मा गिरजे में उस अनुकूल परिस्थिति में लेके उन्होंने जिताया. आसान नहीं था. उनकी बीवी उनके साथ बपतिस्मा नहीं किया. शराब और धूम्रपान का लुभाव तगड़ा था. वो गरीब थे. उनकी माँ ने विरोध किया, कहा कि गिरजे में बपतिस्मा लेने पर वह उनका बेटा नहीं कहलाएगा. ब्राजील में केवल 300 सदस्य थे. गिरजे का एक भी गिरजाघर नहीं था. आश्चर्यचकित हूँ मैं अपने पिता के दृढ़ संकल्प और धैर्य से. उन्होंने ये निर्णय ऐसी अनुकूल हालातों में कैसे किया? जवाब सीधा है, क्योंकि मेरे पिता ने मॉर्मन की किताब पढ़ी. पढ़ने के बाद उन्हें पता पड़ा संदेश सच्चा है, पूर्वावस्था प्राप्त करने का. मॉर्मन की किताब साबित है कि यीशु मसीह ये अंतिम दिनों के संतों का गिरजा सच्चा है. प्रिज्मा गॉस्पल सिखाता है मॉर्मन की किताब पवित्र आत्मा से जुड़ने पर सबसे शक्तिशाली साधन है परिवर्तन में. प्रधान गॉर्डन बी हैंकली घोषणा की, जिन्होंने मॉर्मन की किताब प्रार्थना पूर्वक पढ़ी है, अमीर हो या गरीब, शिक्षित या अशिक्षित, ये उनकी शक्ति के में विकास किया है। बिना संकोच में वादा करता हूँ कि अगर तुम प्रार्थना पूर्वक मॉर्मन की किताब पढ़ोगे, ध्यान दिए बिना कितने बार पहले पढ़ चुके हो, तुम्हारे दिल में आएगी प्रभु की पवित्र आत्मा, उनका दृढ़ संकल्प, उनके आदर्शों का पालन करने का आएगी दृढ़ गवाही भगवान के पुत्र के जीते वास्तव्य की। ये वादे सच हुए मेरे पिता के लिए और मेरे परिवार के लिए। जैसे हमें सिखाया गया है, हम धर्मशास्त्र हर दिन परिवार में पढ़ते हैं। कई सालों से हमने मॉर्मन की किताब घर पर कई बार पढ़ी है और पढ़ते रहेंगे। जैसे वचन मिला है, प्रभु की आत्मा परिवार में के दिल में आई है। हमें दृढ़ संकल्प मिला है आज्ञा की पालन करने का, उनके आदर्शों का, और गहरी गवाही मिली है भगवान के पुत्रों के जीते वास्तव्य की। जब तुम्हें पता पड़ेगा मॉर्मन की किताब सच्ची है, ये भी पता पड़ेगा कि जोसेफ स्मिथ को भगवान ने बुलाया यीशु मसीह के गिरजे की पुरवस्था लाने के लिए। ये भी पता पड़ेगा जोसेफ स्मिथ ने पिता और बेटे को देखा। पता पड़ेगा एक विश्वास और एक सही बपतिस्मा है, और भगवान का संदेश जो पृथ्वी पर हाजिर है वो पुरोहित्य की सारी चाबियां इस्तेमाल कर सकता है, जैसे प्राचीन काल में पीटर ने किया। पता पड़ेगा यीशु मसीह पुत्र है भगवान का, एक नाम है जिससे मुक्ति मिल सकती है। पता पड़ेगा पिता जीवित है और हमसे प्यार करते हैं। पता पड़ेगा उनकी मुक्ति की योजना संपूर्ण है, और तुम्हें इच्छा होगी विधियां पालने की, आज्ञा अनुसार जीने की और अंत तक सहने की। मुझे दुख होता है जब कोई जिसे मॉर्मन की किताब दी जाती है ये बातें उसे समझाई जाते हैं वो पढ़ने से इनकार करते हैं। दुख होता है जब कुछ लोग दूसरों के प्रभाव में आके किताब की जांच भी नहीं करते और उसे अमूल्य समझ के परे करते हैं, उस आत्मिक भोज को चखे बगैर। ये मेरी समझ के बाहर है। ये है जैसे एक बेटा या बेटी जो प्रेमपूर्ण पिता से जुदा हो उनका खत पढ़ने से भी इनकार करे, खत खोले बगैर। ये निर्णय लेने वाले सब छोटे बच्चे जैसे हैं जो माँ ने प्यार से बनाए भोजन को चखने से भी इनकार करते हैं। भगवान लोगों को व्याख्या करते हैं जब वो मोरोनाय के अध्याय 10 छंद 3 में दिया हुआ उपदेश मानते हैं। संक्षेप में फिशमा गॉस्पल कहता है, मॉर्मन की किताब पढ़ने के बाद यीशु मसीह के संदेश पर गौर करो, भगवान से यीशु मसीह पर विश्वास रखते हुए प्रार्थना करो कि तुम्हें मॉर्मन की किताब की गवाही मिले और जोसेफ स्मिथ उनके संदेशता होने की भी। भावदीय प्रार्थना करो सच्चे इरादे से, मतलब भगवान से जवान मिलने के बाद उसे अमल भी करो। जो बहस करेंगे कि हम ये नहीं जान पाएंगे, उन्हें मैं गवाही देता हूँ कि हम जान सकते हैं। तब जब हम विनम्र होके भगवान का आदेश मानेंगे कि उनके संदेशता द्वारा मिला है, इस तरीके पर अगर विश्वास नहीं तो ये सिर्फ ये धारणा स्वीकार करनी पड़ेगी कि या तो भगवान सत्य नहीं जानते या सत्य दिखाने की शक्ति उनमें नहीं है। सिर्फ इसलिए कि कोई किताब के ये वादे की चुनौती नहीं स्वीकार करता, इसलिए मतलब नहीं बनता कि दूसरों ने ये नहीं किया। मैं अपने पिता का नाम स्मरण क्यों करता हूँ? क्योंकि उन्होंने मॉर्मन की किताब पढ़ी और उसके वादे की चुनौती स्वीकार की। मैं अपने माता पिता का नाम स्मरण क्यों करता हूँ? क्योंकि वे जवाब मिलने के बाद झिझकाए, लेकिन बाधाओं के बावजूद अपने पिता उन्होंने मेरा जीवन सुखी बनाया मेरे पिता होने के पहले, धैर्य रख के भगवान की इच्छा का पालन करने से। आज मैं निमंत्रण देता हूँ आप सभी को कि आप मॉर्मन की किताब पढ़ें और उसके वादों की चुनौती स्वीकार करो। आपको पता पड़ेगा किताब सच्ची है। मैं अपना बयान देता हूँ कि मॉर्मन की किताब भगवान का शब्द है। उस वजह से मैं जानता हूं जोसेफ स्मिथ उनके संदेशता है। मैं जानता हूं उन्होंने मॉर्मन की किताब नहीं लिखी पर उसका भगवान की शक्ति से भाषांतर किया है। मैं जानता हूं थॉमस एस्मंसन भगवान के संदेशता हैं। पृथ्वी पर सिर्फ उनके पास पुरोहित्य की सभी चाबियां हैं और उन्हें इस्तेमाल करने का हक भी है। मैं जानता हूँ यीशु मसीह के नाम से आमीन।
हम उस समय में रहते हैं पॉल द्वारा की गई थी। हम विचलित अप्रमित दुखी या उदास हो सकते हैं। अपने चुनाव के मार्गदर्शन और हमारे मार्ग पर रहने के लिए कैसे हमारे पास प्रभु की पवित्र आत्मा हो सकती है? ईश्वरी वचन में प्रभु ने इस आदेश में जवाब दिया और कि तुम अपने आप को संसार की निकलक रखो, तुम प्रार्थना के भावनाओं जाओ और पवित्रता दे अप्रित कीजिए। वास्तव में ये तुम्हारे लिए चुनाव गया गया है। अपने कामों से विश्राम लो और ईश्वरों के आराधना करो। ये आदेश वादे के साथ आया। सैक्रमेंट में सप्तिक और उचित रूप से भाग लेने द्वारा हम उस वादे के लिए योग्य होते हैं। हमारे पास हमेशा उनका पवित्र आत्मा होगा। वो पिता और पुत्र की गवाही देता है, सभी चीजों को हमारी यादों के लिए लाती है और हमें सच्चाई के लिए जाती है। वो हमारे मार्ग को दिखलाता है। ये पवित्र आत्मा का तोहफा प्रार्थना प्रधान विल्फर्ड वुड्रोफ ने सिखलाया है, सबसे महान तोहफा है जो मानव के प्रदान किया जा सकता है। सैक्रमेंट सबसे पवित्र आत्मा सभा गिरजाघर में है। ये सिर्फ वो इस विश्राम दिवस सभा है जिसमें पूरा परिवार साथ में भाग ले सकता है। सैक्रमेंट की अतिरिक्त प्रभु यीशु मसीह ने प्रस्तुत और उनके शिक्षों पर हमारे ध्यान को केंद्रित करने के लिए उस पर योजना बनाया जाएगा। मेरे सैक्रमेंट सभा के प्रथम यादें यूटा के एक छोटे नगर से आती है जहां मुझे एक डीकन नियुक्त किया गया था और सैक्रमेंट को देने में भाग लेता था। सैक्रमेंट प्रथम किया जाता था दिया जाता है और शांत सुधा के वातावरण में सदस्यों द्वारा प्राप्त किया जाता है। सभा का संचालन कम रहता है और भाषण धार्मिक होता है, संगीत उचित है और प्रार्थनाशन भी। ये मेरे युवा के अनुभव है। कुछ अनेक अपवाद है। मैं देख सकता हूँ कि कुछ युवा और कुछ बालिक इस सभा में महत्व और व्यक्तिक श्रद्धा के महत्व और उसकी आराधना को अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं। जिन चीजों को मैं यहाँ मैं सिखलाने के लिए प्रभावित महसूस करता हूँ उनके संबोधित करता हूँ जो अभी भी इन सिद्धांतों के समझते और प्रयोग नहीं करते
these important principles and not yet enjoying the promised spiritual blessing.
मैं शुरुआत करता हूँ कि कैसे गिरजाघर की सदस्य अपने आप तैयारी करने चाहिए ताकि वो सैक्रमेंट के में भाग ले सकते हैं। पांच वर्ष पहले वर्ल्ड वाइड लीडरशिप मीटिंग में मैं एल्डर रसल एम नेल्सन जो अपोजल है ने गिरजाघर की प्रति बोझ नेताओं के सिखलाया कि कैसे सैक्रमेंट सभा की योजना का संचालन करना चाहिए। हम उनके प्रस्ताव की एक बहुत व्यक्ति तरीके के करते हैं। एल्डर नेल्सन ने कहा, हम सैक्रमेंट सभा में टूटे दिल और निराश आत्मा लाते हैं। हमें विश्राम दिवस का पालन करने की ये व्यवस्था है। शांत विश्राम के समय संगीत शांत होता है। ये बात बात करने के संदेश देना कि समय नहीं होता है। अपने लोगों को आदर करना सिखलाओ। उनके पूर्ण जीवन की बात जब उद्धारकर्ता नेफाइट के सामने उपस्थित हुए, उन्होंने उन्हें सिखलाया कि वे कौन खून बहाने द्वारा बलिदान की प्रार्थना को बंद कर दी है। उसके बजाय अब मेरे लिए ये निराश हृदय और एक सुकृत आत्मा की बलि दिया करो, जैसे एल्डर नेल्सन ने सिखलाया। गिरजाघर के प्रत्येक सदस्य की जिम्मेदारी है आत्मिक अनुग्रह करने की खोज। इन सैक्रमेंट सभा की आवश्यकता है। उधर की धर्मशास में उनके लेख में प्रधान जोसेफ फील्डिंग स्मिथ सिखलाता है कि हम सैक्रमेंट ले जो दुनिया की मुक्ति के लिए उद्धारकर्ता की मौत की स्मृति और कष्ट का भाग है। प्रधान स्मिथ आगे कहता है, हम प्रभु के पवित्र आत्मा को साथ नहीं रख सकते अगर हम इस आदेश को पालन नहीं करेंगे। किस तरह हम कपड़े पहनते हैं वो आवश्यकता रूप से बतलाता है हमारा विचार और हमारी तैयारी के बारे में, जैसे किसी भी गतिविधि में हम भाग लेंगे। अगर हम तैरना या पर यात्रा या तट पर खेलना जाते हैं, हमारा कपड़े जिसमें टूट छोटे शामिल हैं वही बतलाएंगे। उसी तरह ये सच है कि हम कैसे कपड़े पहने जब हम सैक्रमेंट में भाग ले जाते हैं। जिस तरह हम कपड़े पहन, हम उस धर्मशाला की कितनी हम सैक्रमेंट कर लेते हैं और भाग लेते हैं। सैक्रमेंट सभा में हर सैक्रमेंट सेवा के समय हमें आराधना पर ध्यान देना चाहिए और अन्य गतिविधि से दूर रहना चाहिए। उस आचरण से दो दूसरे के आराधना पर बाधा डाल सकते हैं। जो व्यक्ति से जाता है वो दूसरों को बाधा नहीं पहुंचाता है। प्रभु सैक्रमेंट सभा का समय पुस्तक या पढ़ने का समय नहीं है। जवान लोग दूसरे जगह पर ये लोगों से सेलफोन्स पर बातें करने या लोगों से संदेश भेजने का समय नहीं है। जब हम सैक्रमेंट लेते हैं तब हम पवित्र वादे को करते हैं, हम हमेशा उद्धारकर्ता को याद करेंगे। सभा में जहां वो वादे नहीं करते। सैक्रमेंट सभा की संगीत हमारी आराधना का आवश्यक भाग है। धर्मशास्त्र सिखलाता है कि एक धार्मिक का गीत प्रभु की प्रार्थना है। कितनी बाधाओं है जब उपस्थित में प्रार्थना व्यक्ति गाने की आराधना में भाग लेते हैं। वैशक इस भजन में जो हमें सैक्रमेंट लेने की तैयारी में मदद करता है। सभी सैक्रमेंट सभा संगीत के लिए जरूरी है, हमेशा याद रखते हुए कि ये संगीत आराधना के लिए है, तमाशा के लिए नहीं। प्रधान जोसेफ फील्डिंग स्मिथ ने कहा, विश्वास अभ्यास करने के लिए कहा जाता है और हमारा मुक्तिदाता के लक्ष्य पर ध्यान देना है और सुसमाचार के वचन वाले सिद्धांतों पर विचार करने के लिए समय बिताना है और अन्य उद्देश्यों के लिए नहीं। मनोरंजन, हंसी, चलचलाहट अतीन दिनों की संतों की सैक्रमेंट सभा में स्थान नहीं रखता। हमें प्रार्थना के स्वभाव, निम्रता, अपने दिलों में श्रद्धा के साथ उपस्थित होना चाहिए। जब हम ये करते हैं तब हम धार्मिक या भाग लेते हैं और उसमें हमेशा सैक्रमेंट की धर्मविधि और इस सभा के आराधना होना चाहिए। तब हम पवित्र आत्मा के सच्चाई और उसकी ईश्वरी वचन के लिए योगी होते हैं। इस तरीके से हम अपने जीवन के लिए दिशा और मार्ग पा सकते हैं। पुनर्जीवन प्रभु ने सक्रमण के महत्व पर डाल जब वे अमेरिका आए वफादार निफाइट्स को दी। उन्होंने सक्रमण के चिन्हों को आशीर्वाद दिया और उन्होंने अपने चेलों और बीत को दिया ये आदेश देते हुए, और ऐसा ही तुम वो सब करना जो पश्चाताप करने और मेरे नाम पर बपतिस्मा ले, और ये तुम मेरे उस रक्त के स्मृति में करना जिसे मैंने तुम्हारे लिए किया है, जैसे कि तुम पिता के अपने ये साक्षी दो सको कि तुम्हें सदा मुझे याद रखना, और अगर तुम मुझे सदा याद रखोगे मेरे आत्मा तुम्हारे पास पाओगे, और तुम अपने सदाओ कामों को किया तब अधीन हो, क्योंकि तुम्हारे मेरे चेतन पर अपना मकान बनाया, और तुम में से अगर किसी ने इस काम को अधिक किया तब उन मेरी पर नहीं हो लेकिन और गलत स्थान पर हो, और जब वर्षा होगी बाधा होगी और पर हवा तड़पेंगे। सैक्रमेंट और तर्मिति जिसमें मौजस का कानून की रक्त बलिदान और जली हुई बेतों की जगह ली थी, और उसके साथ आया उद्धारकर्ता की वादा, और मेरे पास जो कोई निराशा हृदय और शुक्रत आत्मा से आएगा उसको मैं अपनी पवित्र आत्मा से बपतिस्मा दूंगा। अब मैं वेक्षक पुरोहित अधिकारियों से बात करता हूं जो सैक्रमेंट में भाग लेते हैं। इस धर्मविधि को हमेशा श्रद्धा और गौरव से साथ करनी चाहिए। पुरोहित जो सभा की से प्रार्थना करते हैं वे शब्दों को धीरे धीरे और विशिष्ट से कहना चाहिए, वादों को ईजिए और से शब्द को करते हैं। शिक्षा जो तैयार करते हैं और डीकन्स जो प्रतिवेदक को देते हैं वो भी बहुत पवित्र करते हैं। मैं पसंद करता हूँ प्रधान थॉमस मॉनसन की कहानी को। 12 वर्ष डीकन्स की रूप में उसने बिशप ने कहा कि वो सैक्रमेंट को बार के पास ले जा जो घाट पर थे जो आशीर्वाद की इच्छा कर रहे थे। उसका आभार मुझे पर बहुत था, प्रधान मॉनसन ने कहा। प्रभु का पवित्र आत्मा मेरे पास आया, मैं पवित्र भूमि पर खड़ा था। जवान पुरुष जो इस धर्मनीति में भाग लेते हैं उन्हें योग होना चाहिए। प्रभु भोज सैक्रमेंट को लेने की धर्मस्था संबंधी चेतावनी निश्चित रूप से उस पर बिटवीन लगो है जो उस धर्मनीति में भाग लेते हैं। गिरजा घिर की सदस्य के अनुशासन लगा करना जिन्होंने गंभीर पापों को किया है, एक बिशप असिस्टी रूप से सैक्रमेंट लेने की विशिष्ट अधिकार को ले सकता है, वही अधिकार रूप से उपलब्ध है कि उस पवित्र धर्मविधि में भाग लेने की अधिकार को ले जाए। जो मैंने पहले कहा जो उचित रूप से पहने की मातव पर जो उनके लिए था जो प्रभु सैक्रमेंट की धर्म प्राप्त करते हैं, स्पष्ट है कि विशेष बल से साथ लागू है एरोनिक पुरोहित के जवान पुरुषों के लिए जो जिस किसी भी तरह से पवित्र धर्मविधि में भाग लेते हैं। उनके बारे में कोई व्यक्तिक प्रस्थान या कर नहीं होनी चाहिए जिससे वे खुद पर विशेष ध्यान दे उपस्थित हुई किसी की आराधना कर और वादा करते समय उनके ध्यान पर पड़े रहे। एल्डर जेफरी आर होलन ने 13 वर्ष पहले महान सम्मेलन में वेश किया था। जब ही हमारे कई वर्तमान डिकन पैदा हुए नहीं हुए जब सब पिछली बार यहाँ कहे थे दोहराता हूँ। मैं सुझाव देता हूँ कि संभव हो सकती शिक्षा और प्रीस्ट सफेद कमीज पहने जो सैक्रमेंट को प्राप्त करते हैं। गिरजाघर में पवित्र धर्मनीति के लिए हम बहुत सेरेमनी कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं और सफेद कमीज ایک اچھی یادگاری ہو سکتی ہے اس سفید کپڑے کے جس سے تمہیں بیپٹیزمل فون میں پہنے ہوئے اور قمیص پہنے ہیں. انت میں سیکرمنٹ کا پربندھ تب کیا جاتا ہے جب اس کے دوارا ادھیکار دیا جاتا ہے جس کے پاس پروہت دھرمت کی چابیاں ہوتی ہیں. اس لیے سیکرمنٹ کو آتما پر گھر پریوار پرنہلن میں نہیں دیا جاتا کیوں نہ پراپت پروہت ادھیکار اپلبدھ ہے. جو سیکرمنٹ میں بھاگ لیتے ہیں سیکرمنٹ تیار کرتے ہیں ہے جس کے پاس اس دھرمت کی چابیاں ہیں یا ان کا ابھیاس کرتے ہیں. میرے گھر پربندھ کا گھر ہے, پربھو نے گھوشنا کیا. پوتر آتما کیسے ہمارے ساتھ رہ سکتا ہے اس دنیا میں؟ ہمیں یسو مسیح کا پراشت کے صاف کرنے والی شکتی کے لیے یوجنا بنانا ہے. ہم تب اس یوجنا ہو یوگیہ ہو سکتے ہیں تب ان کے پاس ٹوٹے ہردے اور آتما کے ساتھ اپنے کے لیے ادیش کا پالن کریں گے, اور جب ہم ہر ہفتے جائیں گے اور سیکرمنٹ لیں گے کہ ہم ہمیشہ, میری ونمر پرارتھنا ہے کہ میں کرتا ہوں ان کے نام سے جس کے پراشچت سمبھو کرتا ہے, جو یسوع مسیح ہے. آمین.
Oh, Thank you, brethren and sister
Allred, for your inspiring words. Thank you, brother, sister Allred, aapke inspiring words ke liye. Brethren, ab Tabernacle Choir gayenge. Uske baad President Dieter F. Uchtdorf, second counselor, jo humne aakhri speaker honge. President Uchtdorf ke bolne ke baad kaik mandli gayenge, I need thee every hour. Benediction will then be offered by Elder Craig A. Carden. Satar ke Elder Craig A. Carden dwara prarthna ki jayegi. Sammelan ko is sham 2 baje tak sthagit kiya jayega.
My dear brothers and sisters,
friends,
what a glorious day for us to witness the announcement of 5 new temples by our beloved prophet. What a beautiful day for all of us. Toward the end of World War II, my father was
a German officer. My father was a German officer. My father was a German officer. My father was a German officer. हालांकि मैं सिर्फ 3 वर्ष का था, मुझे इस बहे और बुक के समय भी अभी याद है। हम चेकोस्लोवाकिया में रहते थे और प्रत्येक दिन युद्ध नजदीक आ रहा था। अंत में 1944 में ठंडे ज्यादे में मेरी माता ने निर्णय की कि जर्मनी भाग जाए, जहां उसके माता पिता रहते थे। उसने हमें तैयार किया और किसी तरह हमें पश्चिम जाने वाले अंतिम शरणार्थी रेलगाड़ी में बिठाया। सभी जगह हम गए, धमकी की आवाज, तनाव भरे चेहरों और लगातार रहने वाली भूख ने हमें याद दिलाया। रास्ते में सामानों के लड़ने के लिए रेलगाड़ी समय समय पर रुकी। एक रात जब रेलगाड़ी रुकी, मेरे माता जी रेलगाड़ी से बाहर गई अपने चार बच्चों के लिए भोजन ढूंढने के लिए। जब वो लौटी, वो देखकर डर गई। रेलगाड़ी और उसके बच्चे चले गए थे। चिंता से लड़ी हुई उसके हृदय में निराशा प्रार्थनाएं भर गई। उनके शोक में बड़े और अंधेरा रेलगाड़ी स्टेशन ढूंढा। शायद मैं कभी नहीं जान सकूंगा जो सभी कुछ मेरी माता के दिल और दिमाग से गुजरे होंगे उस काली रात को, जब उसने अंदर कपरना रेल रोड स्टेशन में अपने खोए हुए बच्चों को ढूंढता था। पर यह मैं निश्चयता से जानता हूं कि उसके विश्वास ने उसके बहे पर काबू पाया और उसकी आशा ने निराशा पर काबू पाया। वो उस तरह की औरत नहीं थी जो बैठी और अपनी दुखद घटना के बारे में शिकायत करती। उसने अपने विश्वास और अपनी आशा को कार्य में बदला और इसी तरह वो एक पत्री से दूसरी पत्री, एक घड़ी से दूसरी घड़ी जाए जब तक हमें पाना सकी, उस स्टेशन के एक अलग क्षेत्र में कर दी गई थी। मैंने बड़े से रात में और मेरी माता के क्या सहा होगा उसके बारे में सोचा। अगर मैं पीछे समय में लौट सकता हूँ और उसके पास बैठ सकूँ, मैं उसे पूछूंगा कि कैसे उसने भय का समय किया। मैं उसे विश्वास और आशा के बारे में और कैसे उसने निराशा पर काबू पाया, जबकि वो असंभव है। शायद आज मैं तुम्हारे पास और किसी और एक पास बैठ सकता हूँ जो निराशा, चिंतित या अकेलापन महसूस करता है। विश्वास और परोपकार के साथ आशा 3 पैर वाली तिपाई का एक पैर है। ऊंचे नीचे सतह का सामना करने के बावजूद ये तीनों हमारे जीनों का संतुलित करते हैं। आशा के महत्व पर धर्मशास्त्र स्पष्ट और निश्चित है। देवदूत पॉल ने सिखलाया कि धर्मशास्त्र इस उद्देश्य से लिखे गए कि हमारे पास आशा हो। आशा में हो सकती है जो हमारे जीवन में खुशियां भर सकती है। उसकी अनुपस्थिति में जब हमारे दिल की इस आशा में विलंब होते हैं। आशा पवित्र आत्मा को तोहफा है, मसीह का प्रसिद्ध और उनके पूर्ण जीवन की शक्ति द्वारा वो आशा ही है। इस तरह की आशा दोनों वादे को सिद्धांत और आदेश है। जैसे सभी आदेश के साथ हमारी जिम्मेदारी है कि उसे अपने जीवन का सक्रिय भाग बनाएं। और आशा खोने के भगवे पर काबू पाएं। उधर की आशा रक्तमक ताप की तरह है। वो हमारे विश्वास की नींव है। वो हमारे प्राण का लंगर है। अकेलापन में जब उन्होंने अपने लोगों के पूर्ण बर्बादी को देख लिया था, आशा पर विश्वास करते थे। निफाई जैसे देश के अंत में मोरोनाई ने लिखा कि उसके बिना हम ईश्वर के राज्य को उत्तर अधिकार नहीं प्राप्त कर सकेंगे। धर्मशास्त्र बतलाते हैं कि हर एक कामों में विरोध स्वाभाविक है, इसलिए विश्वास, आशा और परोपकार का साथ अपने सदस्य साथियों की परवाह करने में संदेह, निराशा और असफलता से हम बेकाबू की ओर जा सकते हैं, जो हमें आशीर्वादों को प्राप्त करने से वंचित कर सकते हैं। शैतान निराशा से निराशा का इस्तेमाल करता है ताकि अंदर में दिलों और दिमागों को बंदी बना सके। निराशा अभिलाषा को मार देती है, बीमारी लाती है, आत्मा को दूषित करती है और दिल को कमजोर कर देती है। निराशा एक सीधे के तरह को हो सकती है जो सिर्फ और हमेशा निश्चय की ओर ले जाएगी। आशा दूसरी ओर दुख के किरण पुंज की तरह है जो हमारी वर्तमान परिस्थितियों की क्षितिज के ऊपर उठ रही है। स्वर्ग के पिता की स्नेह परवाह में रखे जिन्होंने उनके लिए वो मार्ग तैयार किया हुई है, जो स्तरों का बदलने के विश्वास, भ्रम और भय की दुनिया में अंत सच्चाई ढूंढती है। भाषा की जतिताएं आशा शब्द की कुछ और प्रभावतान देते हैं। उदाहरण के रूप में एक बच्चा एक खिलौने वाले फोन की आशा करेंगे कि किशोर एक विनिष्ठ दोस्त से फोन कॉल की आशा करेंगे। मेरी इच्छा है उस आशा के बारे में बात करने की जो अवंश व्यक्त चिंताओं से ऊंची हो और वो इज़राइल की आशा पर केंद्रित है। मानव की महान आशा ज्ञान नहीं है, पर स्थिर विश्वास की प्रभु अपने वादे जो हम इसके लिए हैं उनकी पूर्ति करेंगे। यह विश्वास करना और प्रत्याशा करना कि हमारी प्रार्थनाओं की जवाब मिलेंगे। ये आत्मविश्वास, आशावाद, उत्साह और धैर्य दिखलाता है। सुसमाचार की भाषा में ये आशा निश्चित, अटल और सक्रिय है। प्राचीन समय के भविष्यवक्ता दृढ़ विश्वास और जीवित आशा के बारे में बात करते हैं। वो ये आशा है जो अच्छे कार्यों द्वारा ईश्वर का मयुक्त करता है। आशा के साथ हमारे पास धैर्य हो सकता है और ऐसी चीजें हैं जिनके लिए हम आशा करते हैं और जिन पर हमारी आशा होती है। जिन चीजों के लिए हम आशा करते हैं और बहुरा भविष्य की घटनाएं होती है। क्या यह संभव है और भी गौरपूर्ण भविष्य की कल्पना करने उसकी तुलना में जो हमारे स्वर्ग के पिता द्वारा तैयार किया गया है? उनकी अंत प्रश्चित के कारण हमारे पाप माफ किए जा सकते हैं और नए की सभा में साफ और पवित्र खड़े हो सकते हैं। और किस प्रकार के जीवन के हम आशा कर सकते हैं जो मसीह में आते हैं, अपने पापों का पश्चाताप करते हैं और विश्वास के साथ रहते हैं, वो हमेशा शांति में रहते हैं। इस अनंत तोहफे के मूल्य का बारे में सोचिए। वो हमारे आसपास होंगे जिनसे हम प्यार करते हैं। उदारकर्ता मुक्ति के लेखक हैं। आज चाहे हमारे जीवन के अध्याय कितने आशाहीन लगे, क्योंकि यीशु मसीह के जीवन और बलिदान के कारण हम आशा करें और आश्वासन पाएं। जो बताएं आँख ने नहीं देखा और कान ने नहीं सुना और वो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए। जिन चीजें हम आशा करते हैं वो हमें हमारे दैनिक जीवन में संभालते हैं। वो अपने मुसीबतों भगवान और दुख के समय हमारा समर्थन करते हैं। वास्तव में कभी कभी ऐसा समय होता है जब अंधकार आश्रय लगता है। इस तरह के समय में पुनर्स्थापित सुसमाचार के दिव्य सिद्धांत जिन पर हम आशा कर रहे हो, हम यीशु मसीह पर आशा करते हैं, ईश्वर की आचार पर, पवित्र आत्मा के विश्व रूप में, उस ज्ञान पर कि प्रार्थनाएं सुनी जाती और उनके जवाब दिए जाता है, क्योंकि ईश्वर वफादार थे और प्राचीन समय में अपने वादा की पूरी की। जब हम ईश्वर के प्रोफेट के सलाह का पालन करेंगे, ईश्वर उनकी अच्छाई और उनकी शक्ति पर इस प्रकार की आशा रखने से कठिन चुनौती से समय में हिम्मत मिलती है और वो संदेह और निराशा द्वारा संकट महसूस करते हैं। हम को विशिष्ट करना सकती है उसी तरह जिसे हम चलना सकते हैं धीरे धीरे। जब हम धर्मशास्त्रों को अध्ययन करते हैं, आपने स्वर्गीय पिता से बात करते हैं, बुद्धिमानी के शब्द का पालन करने की प्रतिज्ञा करते हैं और पूरी कायदे देते हैं, हम आशा से भरपूर होते हैं। हम अपनी योग्यता विकसित करते हैं ताकि पवित्र आत्मा की समर्थ्य से आशा बढ़ती है। जब हम और भी पूर्णता से समाचार अपनाएंगे, ऐसे भी समय होंगे जब हमें हिम्मत के साथ आशा करने के निर्णय करना पड़े। क्यों न हमारे आस पास सभी चीजें इस आशा के खंडन करें। अब्राहम के निराशा में भी आशा रख विश्वास करेंगे। विश्वास आता और परोपकार एक दूसरे के सहायता करते हैं। जब एक बढ़ता है अन्य भी बढ़ते हैं। आशा विश्वास के साथ आती है, बिना विश्वास के कोई आशा नहीं है। उसी तरह विश्वास आता आशा से होता है, क्योंकि विश्वास आशा की हुई वास्तवों का निश्चय है। आशा देना विश्वास और परोपकार के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। जब निराशा और विलंबन विश्वास को हम कम करते हैं, आशा वहां रहती है समर्थन करने के लिए। जब हताशा और अधीरता परोपकार से चुनौती करती है, आशा हमारे संकल्प से को संभालने रहती है और हमें उत्तेजित करती है। जितनी उज्ज्वल हमारे आशा होगी, उतना महान हमारा विश्वास होगा। जितनी मजबूत हमारी आशा होगी, उतना पवित्र हमारा परोपकार होगा। जिन चीजों के लिए हम आशा करते हैं वो हमें विश्वास की नेतृत्व करते हैं, जो जबकि इन चीजों पर हम विश्वास करते हैं वो हमें परोपकार की नेतृत्व करती है। अगर हम पास विश्वास है, हमारे पास आशा भी होनी चाहिए।
From personal experience, each time
प्रत्येक बार जब एक आशा की पूर्ति होती है वो आत्मविश्वास का उत्पन्न करती है। मैं अपने जीवन के कई दृष्टांतों को सोच सकता हूँ जहाँ मैंने आशा की शक्ति को प्रत्यक्ष सका। मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं बच्चन के दिन का विश्वास, युद्ध के भय और निराशा, शिक्षक मौका की कमियों में करते। हमारी माता का उदाहरण सबसे कठिन समय है आगे बढ़ने और विश्वास और आशा को कार्य में लाने के लिए। हमारे परिवार और मेरा समर्थन किया और ये आत्मविश्वास दिया कि इन अनुभवों से मैं जानता हूँ कि ये यीशु मसीह का सुसमाचार और अंतिम दिनों के चंतन के यीशु मसीह के गिरजाघर की सदस्यता विश्वास को मजबूत और यीशु मसीह का चेलों को प्रकार की ओर नेतृत्व करते हैं। निराशा के समय आशा हमारे समर्थन करती है। अगर हम थोड़ी देर के लिए आभास करें कि प्रभु हमारे लिए क्या रखे हुए हैं, न कि सिर्फ अगले जीवन में पर इस जीवन में, हमारी आशा स्थिर रहेगी और निराशा हम पर कभी नहीं कभी पर सकेंगे। जेरेमिया के साथ मैं घोषणा करता हूँ, धन्य है वो पुरुष जो प्रभु पर भरोसा रखता है। जोवल के साथ मैं गवाही देता हूँ कि प्रभु अपनी प्रजा के लिए शरण स्थान और इसलिए नीफाई के साथ मैं घोषणा करता हूँ, मसीह में दृढ़ विश्वास रखे, परमेश्वर और सभी मनुष्य से प्रेम रखे, मसीह के वाणी का प्याला पीते रहे। पिता इस प्रकार कह रहा है तुम्हें आनंद जीवन मिले। ये आशा का गुण है जिसे मैं हम प्रेम और जिसे हम विकसित रख करें। जो कोई इस आशा को रखता है वो अपने आप को आशा वैसा ही पवित्र करता है। प्रभु ने हमें आशा का आश्वासन वाला संदेश दिया, डरिए मत शिष्य, ईश्वर इंतजार करेंगे प्राप्त करने के लिए आपकी। जो अपने पापों को त्याग देने वाला और विश्वास आशा और परोपकार में लाएंगे, और जो सभी कष्ट में है, जो सभी निराशाएं, मैं तुम्हारे लिए प्यार और गहरी चिंता के साथ कहता हूँ, हर मत मानिए। अपनी आत्मा इसराइल को अपनी और उस पर निर्भर रहिए। दुख कम करता है और प्रत्येक हृदय को खुश रखता है। इस पर मैं गवाही देता हूँ और मसीह का नाम से अपना आशीर्वाद देता हूँ। आमीन।
Thank you. Heavenly Father,
स्वर्ग पिता,
we thank thee,
हम धन्यवाद देते हैं कि आपके इकलौते पुत्र के लिए, आपके इस गिरजाघर जो आखिरी दिन में स्थित हुए हैं, जो मौका दिया आप हम भाग ले सके इस कॉन्फ्रेंस में, धन्यवाद देते हैं और आपकी जय जयकार करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं कि आप की आशीष हमारे साथ है। हम प्रार्थना करते हैं कि प्रिस्टुड की शक्ति सभी को मिल सके और सभी परिवार को इस दुनिया में, हम लोगों को एकता की आशीष दीजिए यीशु मसीह के नाम से, आमीन।
This has been the first session of the 178th Semi-Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Speakers were selected from the general authorities and general officers of the church. Music was provided by the Mormon Tabernacle Choir. This broadcast has been furnished as a public service by Bonneville Communications. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited.